एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सबका। मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर, अमित पिंचेवस्की की एको, यानी एको।
हाँ, एको या गूंज। अब सुनने में ये शायद थोड़ा साधारण सा लगे, है ना? जैसे किसी खाली कमरे में आवाज गूंजती है या पहाड़ों में।
हाँ वही, लेकिन ये किताब दिखाती है कि गूंज सिर्फ आवाज का लौटना भर नहीं है।
हाँ,
ये कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये हमारे कम्युनिकेशन, हमारी पहचान, हमारी यादें और हाँ, आजकल हमारी डिजिटल जिंदगी सबको आकार देती है।
सही कहा। मतलब हम अक्सर इस पर सोचते नहीं हैं, पर पिंचेवस्की हमें बताते हैं कि ये गूंजने का जो सिद्धांत है ना, ये बहुत फैला हुआ है, बहुत बुनियादी है।
और आज के दौर में तो और भी जरूरी हो गया इसे समझना, है ना, जब हम सब इतने कनेक्टेड हैं मीडिया से, टेक्नोलॉजी से।
बिल्कुल। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि हम इस किताब के जरिए इको के इस गहरे मतलब को समझें, देखें कि ये कैसे कैसे हमारे अनुभव के उन पहलुओं में भी काम करता है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता।
हाँ, और इसके लिए हमारे पास दो डिटेल समरीज हैं, तो हम उनके आधार पर किताब के मुख्य विचारों को खंगालेंगे। तो चलें फिर।
हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं लेखक से, अमित पिंचेवस्की।
कौन है ये, क्या बैकग्राउंड है इनका?
तो अमित पिंचेवस्की वो इसराइल में हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में प्रोफेसर हैं कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में।
अच्छा।
और उनकी स्पेशलिटी है मीडिया थ्योरी, साउंड स्टडीज और फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार का दर्शन।
तो मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आवाज कैसे ट्रैवल करती है ना, वो उसके पीछे के मतलब, उसके असर को देखते हैं।
एग्जैक्टली, यही उनकी खास बात है। वो सिर्फ ध्वनिकी के एक्सपर्ट नहीं है, वो मीडिया के फिलोसोफर है। उनका काम अक्सर कम्युनिकेशन में जो रुकावटें आती हैं, जो गैप्स होते हैं, जो विरोधाभास होते हैं, उन पर फोकस करता है।
मतलब वो ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन सीधा सीधा ए से बी तक जानकारी भेजना नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है।
बिल्कुल, उनकी अपनी पढ़ाई में भी देखिए, मीडिया थ्योरी है, फिलॉसफी है, खासकर लेविनास का नैतिक दर्शन, फिर ध्वनिकी भी है और कल्चरल एनालिसिस भी, इन सबको वो मिलाते हैं।
क्या बात है, तो ये उन्हें एक अलग नजरिया देता होगा, ध्वनि तरंगों से आगे जाकर गूंज के कल्चरल, साइकोलॉजिकल और आजकल के टेक्नोलॉजिकल मतलबों को समझने का।
हाँ, और वो बड़े अमूर्त विचारों को ना ठोस इंसानी अनुभवों से जोड़ते हैं, जैसे किसी हादसे की गवाही देना या हम मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी खूबी है। अब आते हैं किताब पर। एको, ये MIT प्रेस की एक सीरीज है, ऑब्जेक्ट लेसन्स।
ऑब्जेक्ट लेसन्स, ये क्या सीरीज है?
ये सीरीज रोजमर्रा की जो साधारण चीजें होती है ना, उनके छिपे हुए गहरे मतलबों पर फोकस करती है। तो इको भी यही करती है, वो इको या गूंज जैसी एक आम सी लगने वाली चीज को लेती है,
दिखाती है कि वो कितनी असाधारण है।
हाँ, कि वो हमारे होने को, हमारे संवाद को, हमारी पहचान, हमारी याददाश्त, इन सब को समझने के लिए कितनी पावरफुल मेटाफर, एक कुंजी है।
तो फिर किताब का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य तर्क क्या है इसका?
देखिए, पिंचेवस्की जो कम्युनिकेशन का पुराना लीनियर मॉडल है ना, सेंडर मैसेज रिसीवर।
अच्छा, वो सीधी लाइन वाला मॉडल।
हाँ वही, वो कहते हैं कि असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वो एक इकोएक मॉडल सुझाते हैं। इकोएक मतलब गूंजने वाला।
गूंजने वाला मॉडल।
ये कैसे काम करता है?
इसमें मतलब पहचान, रिश्ते, ये सब आवाज के लौटने, गूंजने, टकराने, बदलने की प्रक्रिया में बनते हैं।
ये एक तरह का सर्किट है, सीधी सड़क नहीं। अर्थ सिर्फ संदेश में नहीं है, बल्कि उस पूरी गूंज में है।
अच्छा, ये तो काफी अलग सोच है। मतलब हम जो कहते हैं उसका मतलब इस पर भी निर्भर करता है कि वो कैसे सुना जाता है, कैसे वापस आता है।
बिल्कुल, और इससे भी एक कदम आगे, किताब का एक बहुत बड़ा दावा ये है कि हम इंसान बुनियादी तौर पर इकोएक प्राणी हैं, मतलब हम गूंजने वाले जीव हैं।
हम गूंजने वाले जीव हैं, कैसे?
हमारी पहचान इस बात से बनती है कि दुनिया हम पर कैसे रिएक्ट करती है, हमारी कही बातें दुनिया से टकरा कर हम तक कैसे लौटती हैं, किस रूप में लौटती हैं। हम वो हैं जो हम पर वापस गूंजता है। एक तरह से हम बाहर की आवाजों का नतीजा है।
वाह, ये तो बहुत गहरा है। तो किताब हमें कहां कहां ले जाती है इस सफर में?
सफर शुरू होता है एक बहुत पुरानी ग्रीक मिथक से, इको और नार्सिसिस की कहानी।
हाँ हाँ, वो सुनिए।
फिर ये हमारे मन की गहराइयों में उतरती है, साइकोएनालिसिस की मदद से देखती है कि हमारी पहचान, हमारा सेल्फ कैसे बनता है। फिर ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आती है, ट्रॉमा यानी गहरा सदमा और उसकी गवाही, खासकर होलोकॉस्ट जैसे अनुभवों के संदर्भ में। और फिर अंत में ये पहुंचती है आज के डिजिटल मीडिया युग तक, हमारे सोशल मीडिया, हमारे इको चेम्बर्स। तो देखिए, मिथक, मनोविज्ञान, नैतिकता, मीडिया, टेक्नोलॉजी, सबको जुड़ा हुआ इसमें।
चलिए फिर इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहला पड़ाव मिथक, इको और नार्सिसिस। मुझे कहानी याद है, इको एक अप्सरा थी जिसे श्राप मिला था।
हाँ, कि वो खुद से कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ दूसरों के कहे आखिरी शब्द दोहरा सकती है।
पिंचब्स्की कहते हैं, इको सिर्फ एक विचारी किरदार नहीं है, वो एक खास तरह के कम्युनिकेशन का सिंबल है।
कैसा कम्युनिकेशन?
ऐसा जो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है, जो रिएक्शन पर आधारित है, जो हमेशा दूसरे की तरफ देखता है। उसकी अपनी कोई ओरिजिनल आवाज नहीं है, उसका होना ही दूसरों के रिलेशन में है।
अच्छा।
और नार्सिसिस, वो तो अपने अक्स के प्यार में पड़ गया था पानी में देखकर।
सही, लेकिन पिंचेव्स्की यहाँ एक बारीक बात बताते हैं, नार्सिसिस को जो दिखा वो उसका अक्स था, एक परफेक्ट कॉपी, वो गूंज नहीं थी।
अक्स और गूंज में क्या फर्क है यहाँ?
का माध्यम का असर होता है, वो कभी भी हूबहू ओरिजिनल जैसी नहीं होती, लेकिन नार्सिसिस का अक्स वो एकदम परफेक्ट नकल था, उसमें कोई अंतर नहीं था, कोई दूसरापन नहीं था। तो पिंचेव्स्की कहते हैं कि नार्सिसिस की मौत आत्ममुग्धता से नहीं हुई, बल्कि कम्युनिकेशन के फेलियर से हुई। उसके और उसके अक्स के बीच कोई असली संवाद हो ही नहीं पाया, क्योंकि वहां कोई अंतर नहीं था जिससे संवाद पनपता, वो एक बंद लूप में फंस गया।
क्या बात है, मतलब ये कहानी सिर्फ प्यार या घमंड की नहीं, ये कम्युनिकेशन के दो सिरों की कहानी है। एक तरफ ईको, जो पूरी तरह दूसरे पर निर्भर है, और दूसरी तरफ नार्सिसिस, जो खुद में इतना बंद है कि संवाद ही मर जाता है।
बिल्कुल सही, ये मिथक हमें कम्युनिकेशन के दो फंडामेंटल मॉडल देता है। एक है इकोइक, जोड़ने वाला, जिसमें दूसरे की जरूरत है, और दूसरा है नार्सिस्टिक, आत्मकेंद्रित, बंद। ये आगे की पूरी किताब के लिए एक तरह की बुनियाद तैयार कर देता है।
अब चलिए इस गूंज के आइडिया को बाहरी दुनिया से उठाकर अपने अंदर लाते हैं, हमारे मन, हमारी पहचान पर। यहाँ पिंचेव्स्की साइकोएनालिसिस, खासकर जैक्स लकां के मिरर स्टेज सिद्धांत की बात करते हैं।
मिरर स्टेज, शीशे वाला स्टेज, ये क्या है?
लकां का कहना था कि बच्चा जब पहली बार आईने में अपनी पूरी इमेज देखता है ना, तो वो उसे एक बाहरी चीज के तौर पर पहचानता है, और उसी बाहरी इमेज से उसकी मैं की भावना, उसकी पहचान बननी शुरू होती है।
मतलब हमारी पहचान की शुरुआत ही एक बाहरी चीज से होती है, अपने अक्स से। हाँ, एक तरह की भून से या अक्स से। तो इसी तरह हमारी जो पहचान बनती है वो सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आती, वो हमारे आसपास के लोगों, हमारे माँ बाप, समाज, हमारी संस्कृति, उनकी आवाज़ों, उनकी उम्मीदों, उनकी प्रतिक्रियाओं की गूंज को अपने अंदर समोने से बनती है।
Be internalize the echoes.
अरे बाप रे, मतलब हमारा स्व या सेल्फ कोई फिक्स चीज नहीं है। वो एक तरह का गूंजने वाला कमरा है जिसमें बाहर की आवाजें लगातार गूंजती हैं और हमें बनाती रहती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये काफी रेडिकल विचार है ना। और हमारी यादें, वो भी तो ऐसे ही काम करती हैं।
यादें कैसे?
अतीत कभी भी हूबहू वापस नहीं आता, वो हमेशा थोड़े बदले हुए रूप में लौटता है, एक गूंज की तरह। ये जो लीनियर टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, कि समय सीधी रेखा में चलता है, ये उसको भी चैलेंज करता है। आपने देखा होगा पुरानी कहानियों में या मौखिक परंपराओं में कैसे दोहराव और गूंज का इस्तेमाल होता है याद रखने के लिए।
हाँ बिल्कुल, जैसे लोकगीतों में या दादी नानी की कहानियों में कुछ लाइनें बार बार आती हैं।
अच्छा, और किताब में इकोलेलिया का भी जिक्र है, वो क्या है?
इकोलेलिया वो स्थिति है जिसमें कुछ लोग अनजाने में दूसरों की कही बातें दोहराते हैं। इसे अक्सर एक डिसऑर्डर माना जाता है।
हाँ, एक मेडिकल कंडीशन।
पर पिंजेस्की यहाँ भी एक अलग सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं, क्या हो अगर ये इकोलेलिया सिर्फ एक गड़बड़ी ना हो? क्या हो अगर ये हमारी उस बहुत ही बुनियादी जरूरत का एक एक्सट्रीम रूप हो, गूंजने और गूंजने दिए जाने की जरूरत? शायद ये दिखाता है कि हम कितने गहरे स्तर पर एकोएक प्राणी हैं।
ये तो हो गई मन और पहचान की बातें, लेकिन जैसा आपने कहा, किताब का एक बहुत ही संवेदनशील और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आवाज की नैतिकता से जुड़ा है, खासकर गहरे सदमे, ट्रॉमा और उसकी गवाही के संदर्भ में।
हाँ, यह हिस्सा वाकई बहुत गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है।
पिंचेस्की यहाँ होलोकॉस्ट जैसे भयानक हादसों को उदाहरण लेते हैं और पूछते हैं कि ऐसे भयंकर ट्रॉमा के संदर्भ में गूंज की क्या भूमिका है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा सदमा झेला है उसके लिए वो याद एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, वो एक तरह की घुसपैठ करने वाली, परेशान करने वाली गूंज होती है जो बार बार लौटती है, उसे सताती है।
और फिर गवाही देना, अपनी कहानी बताना, क्या वो इस अंदरूनी गूंज को बाहर निकालने का एक तरीका है?
हाँ बिल्कुल, गवाही देना, अपनी बात कहना, उस अंदरूनी दर्दनाक गूंज को एक आवाज देने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश तब तक अधूरी है जब तक कोई सुनने वाला ना हो, और यहाँ सुनने वाला सिर्फ कोई कान लगाकर बैठा इंसान नहीं है।
तो फिर
सुनने वाला यहाँ एक नैतिक दीवार या सतह की तरह है, एक ऐसी सतह जिससे पीड़ित की आवाज टकरा सके, गूंज सके, प्रतिध्वनित हो सके, बिना उस सतह के आवाज खो जाएगी।
तो सुनने वाले पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, पिंचेव्स्की इस पर बहुत जोर देते हैं कि सुनना, खासकर ऐसी दर्दनाक गवाही को सुनना, कोई पैसिव काम नहीं है, ये एक एक्टिव मॉरल जिम्मेदारी है।
सुनने वाला उस गवाही का को क्रिएटर बन जाता है, उसे शायद सब कुछ समझना जरूरी ना हो, लेकिन उस आवाज को ठहरने और गूंजने के लिए एक स्पेस देना, एक सत्ता देना जरूरी है।
ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मिथक मन और नैतिकता से आगे बढ़ते हैं और आज की दुनिया पर आते हैं। तकनीकी गूंज, मतलब मीडिया और समाज, टेक्नोलॉजी ने इस गूंज के पूरे फिनोमेनन को कैसे बदला है?
हाँ, ये तो आज के लिए बहुत रेलेवेंट है। किताब का तर्क है कि दरअसल जितनी भी मीडिया टेक्नोलॉजीज हैं, पुराने जमाने के एम्फीथिएटर की बनावट से लेकर टेलीग्राफ, रेडियो और आज के हमारे स्मार्टफोन्स तक, ये सब बंचित में इको मशीन है।
इको मशीन
मतलब गूंज पैदा करने वाली मशीन है।
हाँ, ये इको तकनीक, उनका बेसिक काम ही यही है, आवाजों को, छवियों को, संदेशों को पकड़ना, स्टोर करना, भेजना और वापस लौटाना।
हाँ, बात तो सही है। सोचिए ना, पुराने गुंबद आवाज को कैसे गुंजाते थे, टेलीग्राफी या रेडियो में सिग्नल डिले से एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक इको बनती थी।
और आज की दुनिया में डिजिटल सैम्पलिंग, रीमिक्स कल्चर, ये सब क्या है? ये गूंज के ही तो नए नए रूप हैं। हम पुरानी चीजों को लेकर उन्हें बार बार दोहराते हैं, बदलते हैं।
बिल्कुल, और डिजिटल युग, खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया, उन्हें तो अक्सर इको चेम्बर कहा जाता है।
हाँ, इको चेम्बर मतलब ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हमारी अपनी ही आवाज गूंजती है।
एग्जैक्टली, जो एल्गोरिथम्स हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो हमें ज्यादातर वही चीजें दिखाते हैं जो हमारे विचारों से मिलती जुलती हैं या जो हमें पहले से पसंद है।
तो नतीजा क्या होता है?
नतीजा ये कि हमारी अपनी ही मान्यताओं और विचारों की गूंज लगातार तेज और मजबूत होती जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक शीशे के महल में बंद हो गए हैं जो बस हमारी ही छवि को और जोर से हम पर वापस फेंकता रहता है।
ये तो फिर वही नार्सिसिस्ट वाली बात हो गई, अपने ही अक्स में खो जाना, बाहर की आवाज सुनाई ना देना।
हाँ, ये उस तकनीकी गूंज का डार्क साइड है। देखिए, ये हमें अपने जैसे लोगों से जोड़ तो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें दूसरों से अलग थलग करके एक बंद नार्सिसिस्टिक फीडबैक लूप में फंसा भी सकती है। तो इसमें जुड़ने की क्षमता भी है और अलगाव का खतरा भी।
और इसमें हमारे आसपास के माहौल का भी रोल होता होगा, मतलब आवाजें कहाँ गूंज रही हैं, किसी प्राकृतिक जगह में, किसी बिल्डिंग में या डिजिटल स्पेस में।
हाँ बिल्कुल, अलग अलग ध्वनिक वातावरण हमारे कम्युनिकेशन को अलग अलग तरह से आकार देते हैं।
तो हमने काफी सारी बातें कर ली, अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश निकालने हो तो पहला क्या होगा? मेरे ख्याल से तो ये कि गूंज सिर्फ एक पैसिव चीज नहीं है, सिर्फ दोहराव नहीं है, ये एक्टिव है, ये मतलब बनाती है।
हाँ, मतलब जब आवाज लौटती है तो वो खाली हाथ नहीं लौटती, वो अपने साथ रास्ते के निशान लेकर आती है और अक्सर ओरिजिनल से भी ज्यादा रिच, ज्यादा गहरा मतलब पैदा करती है।
सही, जैसे हम कोई कहानी बार बार सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हर बार उसमें कोई नई बात, कोई नया एंगल जुड़ जाता है ना।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश मेरे लिए ये है कि हमारा सेल्फ, हमारी पहचान, वो कोई बंद चीज नहीं है, वो दूसरे के जरिए बनती है, दूसरों की प्रतिक्रियाओं, उनकी गूंज से लगातार बनती और बदलती रहती है। हम इकोइक हैं।
हम इकोइक हैं। और तीसरा कि कम्युनिकेशन एक सीधी रेखा नहीं है, ये गूंजने वाली प्रक्रिया है, एक लेन देन है, मतलब सिर्फ भेजने वाले के इरादे में नहीं होता, बल्कि उस पूरी गूंजने वाली जगह में, उस पूरे इंटरैक्शन में बनता है।
सही कहा, शायद इसीलिए इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि बात सीधी पहुंच जाएगी, जबकि असलियत में वो गूंजती है, बदलती है।
चौथा पॉइंट क्या होगा? टेक्नोलॉजी वाला?
हाँ, कि टेक्नोलॉजी ने गूंज को बहुत ज्यादा बदल दिया है और एम्पलीफाई कर दिया है। इसमें बहुत क्रिएटिव पोटेंशियल है, जैसे संगीत में, कला में, लेकिन साथ ही इसमें नैतिक जोखिम भी है।
जैसे वो इको चैम्बर वाली बात?
हाँ, जो हमें अपनी ही दुनिया में कैद कर सकते हैं। और पांचवां और शायद सबसे जरूरी, वो सुनने की नैतिकता।
बिल्कुल।
कि सुनना, खासकर मुश्किल हालात में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को सुनना, ये सिर्फ कान का काम नहीं, ये एक एक्टिव नैतिक जिम्मेदारी है। उन आवाजों को गूंजने के लिए जगह देना, सतह देना। किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। एक जगह वो कहते हैं सार रूप में कि गूंज जो है वो ओरिजिनल आवाज की कोई कमी या फेलियर नहीं है, बल्कि उस आवाज के संदेश बनने की पहली शर्त है। सोचिए, अगर कोई पुकार ऐसी हो जिसके गूंजने की कोई संभावना ही ना हो, तो वो कम्युनिकेशन नहीं, वो सिर्फ शोर है।
वाह।
मतलब संवाद के लिए जरूरी है कि आवाज कहीं टकराकर लौट सके, गूंज सके। और नार्सिसिस्ट के बारे में वो बात भी कितनी गहरी है।
कौन सी? कि नार्सिसिस्ट आत्मकेन्द्र से नहीं मरा, वो कम्युनिकेशन के फेलियर से मरा। उसका जो अक्स था वो एक परफेक्ट कॉपी थी, गूंज नहीं थी, उसमें कोई फर्क नहीं था, कोई दूसरापन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। ये कॉपी और गूंज का फर्क बताता है। संवाद के लिए दूसरे का होना, अंतर का होना कितना जरूरी है।
बिल्कुल। और ट्रॉमा और गवाही पर वो बात तो बहुत ही मार्मिक है। सदमा झेलने वाले के लिए गवाही कोई रिपोर्ट नहीं होती, वो एक सतह की तलाश में भटकती हुई गूंज होती है। सुनने वाले की नैतिक जिम्मेदारी उसे समझना नहीं, बल्कि वो सतह बनना है जिससे वो आवाज टकरा सके, गूंज सके। ये सुनने की जिम्मेदारी को बार बार हाईलाइट करता है।
और आज की मीडिया माहौल पर वो टिप्पणी भी देखे कितनी सटीक है। आज की मीडिया टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे संदेश पहुंचाने के चैनल नहीं है, वो गूंज पैदा करने के लिए बनाए गए आर्किटेक्चरल सिस्टम है। एक सोशल मीडिया फीड सोचिए, वो शीशों का एक हॉल है जिसे खास तौर पर हमारी ही एक छवि को बस जरा ज्यादा शोर के साथ हम पर वापस फेंकने के लिए डिजाइन किया गया है।
सोचने पे मजबूर करती है ये बात। और अंत में एक नैतिक सवाल उठता है।
क्या?
कि नैतिक सवाल ये नहीं है कि हमें गूंज से जुड़ना है या नहीं, क्योंकि वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है ही, उनसे बचा नहीं जा सकता। बल्कि सवाल ये है कि हम उनके साथ जिम्मेदारी से और रचनात्मक रूप से कैसे जुड़ें, मतलब हम इन गूंजों को मैनेज कैसे करें।
तो ये सब बड़े विचार हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इन्हें हम कैसे अमल में ला सकते हैं? पहला तो शायद कम्युनिकेशन में ही है।
हाँ बिल्कुल। सिर्फ अपनी बात कहने पर फोकस करने के बजाय एक्टिव होकर सुने, दूसरे की बात को सच में सुने, उन्हें सोचने का स्पेस दें, उनकी बातों को रिफ्लेक्ट करें, शायद दोहरा के पूछें कि क्या आप ये कह रहे हैं। ये समझना कि बातचीत एक इकोइक प्रोसेस है, लेन देन है।
और दूसरा, डिजिटल दुनिया में
थोड़ी जागरूकता। अपने मीडिया इको चेंबर को पहचाने। क्या आपकी न्यूज फीड, आपके सोशल मीडिया दोस्त सब आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं? अगर हाँ, तो जानबूझकर अलग नजरिए, अलग विचार खोजें, एक तरह की इको लिटरेसी या गूंज साक्षरता डेवलप करें।
इको लिटरेसी अच्छा शब्द है। और तीसरा, शायद अपनी अंदरूनी दुनिया के लिए।
हाँ, ये पहचानना कि हमारे अंदर कौन सी गूंजें चल रही हैं, पुराने अनुभव, माँ बाप की आवाजें, समाज की उम्मीदें, ये हमारे आज के व्यवहार को, हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इन्हें समझने से शायद हम कुछ अनहेल्दी पैटर्न को तोड़ पाएं।
और चौथा, सामाजिक स्तर पर भी तो इसका कुछ मतलब है।
बिल्कुल। जैसा हमने नैतिकता वाले हिस्से में बात की, जो हाशिए पर हैं, जिनकी आवाजें दबा दी जाती हैं, या जो ऐतिहासिक अन्याय के शिकार हुए हैं, उनकी गवाही को, उनकी कहानियों को एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ सुनना, उन्हें गूंजने के लिए मंच देना, सिर्फ हमदर्दी दिखाना काफी नहीं, उनकी आवाजों को एक्टिवली जगह देना जरूरी है। मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा में सबसे स्ट्राइकिंग बात यह रही कि कैसे एक हजारों साल पुरानी मिथक, इको और नार्सिसिस की कहानी आज के डिजिटल एज, हमारे सोशल मीडिया के डायनेमिक्स को समझने के लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट है। कमाल है। ये दिखाता है कि कुछ इंसानी पैटर्न कितने गहरे और टाइमलेस होते हैं।
हाँ, सही कहा। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही वो ये कि सेल्फ या मैं कोई ऐसी ठोस चीज नहीं है जो अंदर बंद है, ये तो लगातार बन रही है, बदल रही है दूसरों की प्रतिक्रियाओं से, उनकी गूंज से। और इसीलिए आज के इस शोर भरे इको चेंबर वाले संसार में इको लिटरेसी, मतलब अपने आसपास और अपने अंदर की गूंजों को समझना और संभालना, ये वाकई एक बहुत जरूरी स्किल बन गया है।
तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हम जानबूझकर अपने पर्सनल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम में, यानी हमारी गूंज की दुनिया में थोड़ी भिन्नता, थोड़ा दूसरापन कैसे ला सकते हैं? अगर हम अलग आवाजों को सुने, अलग नजरियों को जगह दें, तो हमारे अनुभव कैसे बदल सकते हैं?
या फिर ये सोचें कि अभी इसी वक्त हमारे आसपास ऐसी कौन सी गूंज काम कर रही है जिस पर उन्होंने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिया है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।